सभी भाई बहने राजहंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो राजयोग का मोती चुगने के लिए यहाँ पहुंची हैं। तो योगी तो सभी हो, क्योंकि किस न किस के साथ हम सबका योग है। मन जिसको याद करता है या जिसके विषय में सोचता है, उस विषय के साथ योग है। मन व ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराती है। तो राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि परमात्मा से मिलन, और मिलन के लिए ऊर्जा जो काम करती है वो है हमारे विचार, हमारा मन जो आत्मा की चेतनता है। तो दूसरे शब्दों में राजयोग की हम क्या परिभाषा देंगे? राजयोग अर्थात आत्मिक स्मृति में रहकर या आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है। वैसे तो याद करते हैं हम परमात्मा को, लेकिन जब दुख होता है तभी याद करते हैं। इसलिए कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर उसके बाद का वाक्य उनसे भी ऊंचा है कि जो सुख में सिमरण करे तो दुख का ही को होए, सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद रे। तो सुख में भी सिमरण हो, केवल दुख में न हो, क्योंकि परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। हम दुख में ही उसको साथी समझते हैं, सुख में नहीं समझते हैं। हम समझते हैं सुख में तो ये सब साथी है मेरे, और दुख में ही वो ईश्वर साथी है, ऐसी बात नहीं है। या परमात्मा को हम केवल अंतिम साथी समझते हैं, जब किसी की अर्थी ले जाते हैं शमशान घाट में अंतिम यात्रा में, तो क्या कहते हैं उस समय जो शव को ले जाते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत है, सत बोलो गत है। तो राम नाम सत केवल अंतिम यात्रा में ही है क्या? वो तो सदा ही सत है। पर उस सत्य परमात्मा को पहचान लिया तो वो सदा ही हमारा साथी है, और उसको सदा का साथी बनाया तो आत्मा की तो गति होगी ही। तो राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध, लेकिन परमात्मा से मिलन ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये नहीं है कि परमात्मा से हम जाकर के मिलेंगे, यही लक्ष्य है। मिलन तो तात्कालीन है, सोचा और मिलन का अनुभव हुआ, चिंतन किया और मिलन का अनुभव हुआ, तो मिलन तो तात्कालीन है, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे किससे मिलन होता है तो क्यों होता है? जरूर कुछ प्राप्ति है। हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, मानो उसकी चर्चा हो रही है और उसी वक्त वो व्यक्ति आ जाता है, पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे अच्छा हुआ आप आ गए, देखो अभी अभी आपका नाम हमने लिया। और कई बार ये भी कहते हैं आपकी उम्र बहुत बड़ी है, अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए। तो वो व्यक्ति का रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या होगी, एक अच्छा क्यों याद किया, क्या काम था, तुरंत वो पूछेगा। क्योंकि ऐसे ही थोड़ी किसको याद करते हैं, कोई कुछ प्राप्ति है उससे। तो परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी याद से ही आत्मा को सुख शांति प्रेम शक्ति ये प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा इनका स्रोत है और स्रोत से आत्मा संबंध जोड़ती है तो ऑटोमेटिकली वो प्राप्ति उसी वक्त अनुभव होने लगती है। जैसे दूध में चीनी मिलाई उसी वक्त दूध मीठा हो जाता है, तो ये भी योग हुआ। रेडियो स्टेशन से ट्यूनिंग करते हैं उसी वक्त वो आवाज सुनाई देती है। पावर हाउस बिजली घर से कनेक्शन हुआ तुरंत बिजली आ जाती है, तो जिससे संबंध होता है उसका अनुभव उसी वक्त होने लगता है। तो राजयोग के द्वारा जैसे हमने ये समझा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है उसकी विधि बताई, स्वरूप में समानता, गुणों में समानता, धाम की समानता, ये चिंतन जैसे ही किया योग लग गया। जैसे ट्यूनिंग करते हैं रेडियो का तो वही मीटर बैंड, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ, समानता चाहिए हमारे रेडियो रिसीवर पर। इसीलिए रेडियो स्टेशन वाले कहेंगे ना फलाने फ्रीक्वेंसी पर या ये वेवलेंथ, ये मीटर बैंड, इस पर ये रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, तो वो उस पर अपनी सुई रखते हैं और रखते ही हमको आवाज आने लगती है। इसी प्रकार परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि है कि ये जो समानता का चिंतन है ये जैसे ही मन में लाते हैं कनेक्शन जुड़ जाता है, वो शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान मिला, समझ मिली कि मैं कौन हूँ। दे अभिमान में है तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, ये तो रबर है, रबर तो हटाना पड़ेगा। वो परम धाम का वासी है तो मैं आत्मा भी उसी धाम की वासी हूँ, वही मेरा घर है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये घर नहीं है आत्माओं का, ये तो शरीर का घर है। तो मेरा घर वो है, ये आत्मा को जैसे पहचान मिली मन एक सेकंड में उड़ सकता है उस वतन में, और मन की आंख उस परम धाम में परमात्मा को देखे जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है और जो उनके गुण है वो मेरे भी गुण है, ये चिंतन हो। तो हम देखें कि परमात्मा से मिलन ये तो तात्कालीन लक्ष्य है, पर अंतिम लक्ष्य क्या है, क्यों ये मिलन चाहते हैं, क्यों हम परमात्मा को याद करते हैं। वो तो मेरा साथी है और साथी बनकर के राजयोग की यात्रा में साथ दे रहा है, सच्चा साथी है। ये नहीं कि अंत में जाके योगी बनेंगे, योग माना मिलन, अंत में जाके मिलन नहीं होगा, अभी मिलन है। सोचा मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मिलन का अनुभव होने लगा। जैसे बच्चे को पता चला मेरा पिता कौन है उसका नशा चढ़ जाता है, एक कुमारी को पता चला कि यही जीवन साथी बनेगा बस उसकी याद ठहर जाती है। तो तात्कालीन लक्ष्य मिलन, सोचा और मिलने का अनुभव होने लगेगा, पर अंतिम लक्ष्य है कि हम आत्माएं शुद्ध और पवित्र होकर के वापस घर जाएं। जिस घर से हम आत्माएं आई है उसी घर में हमें वापस जाना है। और इस दुनिया में हम आए भी क्यों, ऐसे ही नहीं आए, ऐसे नहीं कि भगवान ने फेंक दिया हमें। कई बार हम दुखी होकर के भगवान को कहते हे भगवान ये दुनिया तुमने क्यों बनाई, क्या पड़ी थी तुमको दुनिया बनाने की, या हे भगवान संसार में हमें क्यों भेजा। वास्तव में संसार में हमने हमें भगवान ने भेजा बहुत बड़ा लक्ष्य दे करके भेजा, ऐसा ही नहीं भेजा है, हम ऐसे ही नहीं गिर पड़े भगवान के घर से। हाँ, बच्चा पैदा होता है तो एक लक्ष्य के साथ माँ बाप उसको जन्म देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कुल का दीपक बनेगा। कई महत्वाकांक्षाएं होती है माता पिता में बच्चे के प्रति। तो परमात्मा ने भी हमें इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा, ये भी नहीं है कि दुख देने लिए भेजा। कई लोग समझते भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाई, हमें इतना दुखी किया, हमको दुख देने लिए भगवान ने भेजा क्या, कई दुख में आकर ऐसे कहते हैं। तो दुख देने लिए भी नहीं भेजा। कोई ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों को दुख देने लिए पैदा करते, ऐसे होता है क्या भाई? होता है माताएं, सुख देने लिए ही पैदा करते हैं। कुल का दीपक बने, नाम रोशन करे, ये सब बहुत मन में इच्छाएं होती है। तो भगवान ने क्यों भेजा हमें, तीन लक्ष्य देकर के भेजा इस दुनिया में। पहला लक्ष्य था, जैसे कहा गया ये संसार एक रंग मंच है, हम सब एक्टर हैं, तो आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है। वो कर्म करने की कला कहाँ प्रदर्शित करे, सृष्टि रंगमंच पर ही। जैसे कोई कलाकार होता, उसमें कोई कला है, वो चाहेगा मैं वो कला प्रदर्शित करूं। बच्चे देखो, कल आपने देखा बच्चे डांस करते, बस उनको इच्छा होती मैं ये दिखाऊं, मैं ये प्रदर्शित करूं, कला है ना अंदर। तो हर आत्मा वास्तव में कलाकार है, हर आत्मा। कर्म करने की भी एक कला है, जीवन जीने की भी कला है। केवल नृत्य कला, संगीत कला, वादन कला, यही कला नहीं है, जीवन जीना भी कला है। और जीवन में अगर दुख है, अशांति है, कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है, कोई विघ्न है, समस्याएं समस्याएं, वो जीवन कला थोड़ी हो गया, वो तो एक जैसे बोझ है। जैसे कोई डांस करे और बिल्कुल बोरिंग लगे, क्योंकि जब जल्दी पूरा करे बोरिंग है, पर किसकी कला तो बहुत अच्छी लगती है, और करे कहेंगे वंस मोर, और किसके लिए कहेंगे बस जल्दी जल्दी पूरा करे। तो अगर जीवन में दुख अशांति है, सोचेंगे कब ये जीवन का अंत हो तो मुक्ति मिले। और अगर जीवन में सुख है, शांति है, प्रेम है, खुशी है, भाईचारा है, एक दो के प्रति सद्भावना है, सहयोग है, तो जीवन तो वरदान है, भगवान का दिया हुआ वरदान है। तो कर्म करने की कला हम सब में है। इसलिए आप देखेंगे जब भी मान लीजिए किसी की टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होता है, डॉक्टर को दिखाएगा, कहेगा तुमको तो फ्रैक्चर है पांव में, अब एक महीना तुमको बिस्तर पर रहना होगा। आप कहेंगे एक महीना बिस्तर पर, उठना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक महीना कैसे होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहेगा अगर पांव ठीक करना है तो फ्रैक्चर है, हो गया है, 3 हफ्ता तो कम से कम चाहिए। तो हम कितने बोर हो जाते हैं, हम कहेंगे डॉक्टर साहब कब ये टांग ठीक होगी, कब प्लास्टर निकलेगा, ठीक है ना, पड़े रहो, मौज है ना, क्यों डॉक्टर को बार बार कहते हैं? खाना पीना सब मिल रहा है, ठीक है, पड़े रहो बिस्तर पर, पसंद करेंगे, पसंद करेंगे, क्या है चिंता, कर्म कुछ नहीं करना, लेटे रहो। लेकिन नहीं, शरीर माना कर्म करने की इच्छा होती है, बिस्तर पर पूरा दिन पड़ा रहे तो बेड सोर हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं पीठ पर, इसलिए उसको उठाते हैं, हिलाना पड़ता है। तो आत्मा के अंदर जो कर्म करने की कला है, वो कला शरीर के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। एक कैसेट है, बहुत अच्छा उसमें गीत है, लेकिन कैसेट प्लेयर नहीं है तो क्या फायदा उस कैसेट का है। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसके अंदर आर्ट है, लेकिन पेंट ब्रश नहीं है, पेंट नहीं है, कैनवास नहीं है, कुछ नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या फायदा उस कला का, साधन चाहिए। तो शरीर साधन है और आत्मा एक्टर है, ये सृष्टि रंगमंच है। तो हम क्यों आए, एक एक्टर की भांति कर्म करने के लिए आए, ये कला है। पर उस कर्म में क्या कला प्रदर्शित करें, यही लक्ष्य हमें समझना होगा। एक कलाकार वो कला क्यों प्रदर्शित करता है, ताकि सबको खुशी मिले, सुख मिले, आनंद मिले, इसलिए ना कि दुख मिले, अशांति मिले, ये सब मिले, इसलिए नहीं। तो हम आत्माएं भी इस संसार में क्यों आए, दूसरा लक्ष्य क्या था? हर आत्मा के अंदर जो ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ये जो निहित है उसकी शक्तियां, ये कर्म में व्यक्त करने के लिए आए। और विशेषता इन गुणों की ये है कि ऐसा धन है जितना बांटो उतना बढ़े। दूसरा धन जो स्थूल धन होता है, वो जितना हम बांटेंगे उतना हमारा तो कम होगा। मेरे जेब में 10 रुपए हैं और मैं किसको 5 रुपए दूंगी, तो मेरे जेब में 20 रुपए थोड़ी हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे। लेकिन शांति धन, प्रेम धन, ज्ञान धन, ये धन है आत्मा का, ये जितना बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा। ज्ञान धन के लिए तो कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, वो कौन सा धन है जो जित देते जाओ आपका बढ़ता जाएगा, तो क्या कहते हैं? ज्ञान धन। ज्ञान दूसरों को देते जाओ आपका कम थोड़ी होगा, पर ये बहुत बड़ा धन है, खजाना है ये। तो आत्मा क्यों इस संसार में आई? ये गुण बांटने के लिए आई, क्योंकि जितना बांटेंगे उतने ये गुण बढ़ेंगे। इसलिए देवता का अर्थ क्या होता है? देवता माना देने वाला, देवता एक तो दैवी लक्षणों वाला, पर देव का अर्थ है देने वाला। तो हम आत्माएं गुणों को बांटने के लिए कर्म द्वारा इसलिए इस संसार में आए। वो कहानी सुनाते ना कि एक बार असुरों ने इंद्रदेव से शिकायत की कि आप तो इंद्र लोक में केवल देवताओं को ही बुलाते हो, असुरों को क्यों नहीं बुलाते हो? हमारा क्या दोष है? केवल देवता ही इंद्र लोक में रह सकते हैं क्या? हमें भी बुलाएं, हम कम से कम स्वर्ग का सुख तो लें। कहानी है, उसका अर्थ है। तो इंद्र ने कहा ठीक है हम बुलाएंगे, तो बुलाया, व्यंजन रखा, बहुत माल खाल बनाए कि असुर भी खाए, लेकिन एक शर्त रखी, और शर्त दोनों के लिए थी, ऐसा नहीं कि पक्षपात किया। असुरों को कहा कि ये पहले आप खाइए, जो चाहिए खाइए, लड्डू पेड़े, मतलब खूब व्यंजन थे, अब जितना चाहिए खाइए, पर शर्त है कि हाथ को मोड़ के नहीं खाना है। सुनिए कहानी, हाथ को मोड़ के नहीं खाना है। अब डंडा बांध दिया ताकि कोई छिप छिप करके तो ना मोड़ ले हाथ, अब डंडा बंधा हुआ होगा तो हाथ मोड़ेंगे कैसे? अब असुरों को आया कैसे खाएंगे हम, तो खैर डंडा बंधा हुआ था तो हाथ तो सीधे ही थे, तो लड्डू उठाया, हवा में उछाला, मुंह खुला रखा, आंखें ऊपर के, हाथ ऐसा। अब सबने यही सोचा मेरे मुंह में जाए, और दूसरे को धक्का मारा और मेरे मुंह में जाए, ये सोचा, तो परिणाम क्या हुआ होगा, किसके मुंह में गया होगा क्या? वो नीचे गिर गया, एक दो को धक्का दिया तो सब एक दो के ऊपर गिरे, लड्डू पेड़ों के ऊपर वो गिरे, लड्डू पेड़े उनके ऊपर गिरे, और सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी मुंह में नहीं जा सका, और लड़ते ही रह गए आपस में। फिर देवताओं की बारी आई, पक्षपात नहीं था, कंडीशन वही थी, क्या दोनों को कहा कि आपको हाथ मोड़ के नहीं खाना है। तो देवताओं ने सोचा कैसे खाएं, तो इतना फटाफट, क्योंकि देने की तो कला थी, अब मेरा हाथ बंधा हुआ है मैं मोड़ नहीं सकती, पर आपके मुंह में तो डाल सकती हूँ, ठीक है ना, आप मेरे मुंह में डाले मैं आपके मुंह में डालू। लेकिन ये कला असुरों को क्यों नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि असुर क्या सोचते हैं, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, 1300 मेरा, मेरे हाथ न लगा, फिर छल कपट, निंदा चुपली, बेईमानी, हेरा फेरी, पता नहीं क्या क्या दुनिया में आजकल हो रहा है, ताकि दूसरे की चीज पर मेरी आंख जो गई है वो मैं जब्त कर लूं, कैसे भी करके मेरा हो जाए। अरे क्या ले जाएंगे इस दुनिया से, कितना खाएंगे? तो क्या है कि ये असुरी आसुरी वृत्ति है, पर दैवी वृत्ति क्या है? न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है, भगवान का है ना। गुरु नानक के लिए दिखाते ना, वो वजन कर रहा था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जब 13 आया तो 13 13 13 13 हो गया प्रभु 13, तो बस 13। तो लेकिन यहाँ ईश्वर ये सब 13 ये सोचने की बजाय 13 भी मेरा, ये मनुष्य की स्थिति हो गई है। इसीलिए देवता और असुर में यही अंतर है, ताकि है तो वो भी मनुष्य ही ना। तो भगवान ने क्यों भेजा इस संसार में, ताकि हम दूसरों को जो आत्मा में गुण है वो कर्म द्वारा, वचन द्वारा, संकल्प द्वारा हम बांट सके, मन से, वचन से, कर्म से, समय से, श्वास से, शक्ति से, हम ये गुण बांटे जो आत्मा में निहित है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है संसार में आने का, लेकिन हम तो वो भूल गए और वस्तुएं संग्रह करने के पीछे ही लग गए। वो अपरिग्रह तो शब्द ही भूल गया, परिग्रह लेना है, लेना है, कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितने जूते रखेंगे, एक साथ 10 जूते पहन सकते हैं क्या, एक साथ 10 साड़ियां पहन सकते हैं क्या, कितना खाएंगे। कई समझते हैं पेट के लिए तो बहन जी पाप करना ही पड़ता है, ये पेट नहीं होता ना तो पाप नहीं होता। अब बेचारा पेट कितना चाहता है, ज्यादा तो चाहिए नहीं पेट को, पेट तो एक ही है ना, दो पेट भी नहीं है कि कहाँ सुरक्षित रख दो पेट के अंदर, फिर वो पेट के अंदर जाए। जानवरों में फिर भी है, वो गाय जो है ना सवेरे ही चारा चढ़ती है, सवेरे ही खा लेती है, फिर दिन भर जुगाली करती है, दिन भर जुगाली करते समय वो उसके जो पेट के पास एक थैली है वो थैली में आधा खाया हुआ रखती जाती है, सवेरे सब खा लेती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेट में डालती है, बुकड़ निकलाती है, फिर जुगाली करती है, फिर पेट में जाता है, तो दिन भर मुंह उसका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। भले मुंह में कुछ नहीं है, आपने खिलाया भी नहीं, लेकिन वो जुगाली होती, क्योंकि जो जमा किया है ना वो खाती रहती है। ऊंट के अंदर भी ये शक्ति है, एक ही बार पानी पी लेगा, फिर एक थैली है उसमें पानी दिन भर का पड़ा ही रहता है, कितने दिनों का भले न पिए, पर इंसान में तो ये है ही नहीं। बार बार प्यास लगती है, भूख लगती है, पर जितना ज्यादा देंगे इस शरीर को उतना कोई फायदा तो भी नहीं है, पेट तो एक ही है। पर तो पेट के लिए कोई नहीं कमाता है, पेट ज्यादा नहीं मांगता है, लेकिन पेटियों के लिए तो जितना भर दो, जितनी पेटियां बढ़ाते जाओ वो तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए थोड़ी इस संसार में हम आए हैं। तो कहने का भाव है कि हम गुण बांटने आए हैं, उसमें वस्तु बांटना भी हो जाता है। जैसे आप किसी के जन्मदिन पर या शादी पर या कोई एनिवर्सरी पर आप जाते हो, एक गिफ्ट लेकर के जाते और उसको भेंट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबारक देते हो, खुशी का मौका है, और हाथ खाली कैसे जाएं? तो एक छोटी सी गिफ्ट ले जाते, कोई बड़ी गिफ्ट ले जाते, कोई छोटी ले जाते हम, तो गिफ्ट देना, सौगात देना ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन वास्तव में आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हो? आपका स्नेह, आपका प्यार, आप उसके प्रति जो रिस्पेक्ट रखते हो, आत्मीयता है, वो कैसे प्रदर्शित करते हो? छोटी से गिफ्ट देते हो, आपको भी सबको कल परसों दी थी गिफ्ट, तो छोटी सी चीज है, कोई डायरियां कोई कम है क्या दुनिया के अंदर, लेकिन ये भगवान के घर से मिली है तो एक लगता है कि एक यादगार है। तो वस्तु अगर हम किसको देते हैं, मानो कि ये प्यार का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है, बाकी कोई चीज का महत्व इतना नहीं होता, चीजों की कमी नहीं है दुनिया में। तो इसलिए हम देखें हम इस संसार में क्यों आए, कि प्यार प्रेम बांटने, पर वो तो भूल ही गए, भूल गए ना कि याद है। और तीसरा लक्ष्य क्या था इस दुनिया में आने का, उस परमात्मा का नाम रोशन करने के लिए। ईश्वर का नाम हम कहां तक रोशन कर रहे हैं, हम अपने आप से पूछें। एक कोई भी देश की सरकार, भारत देश की सरकार अपने होशियार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे करके विदेश भेजती है, सरकार पैसा देती है कि जाओ विदेश में पढ़ के आओ, किस लिए भेजती है? ताकि देश का नाम रोशन करे ना, देश का नाम रोशन करते हैं, कितना गर्व होता है एक वो कल्पना चावला का कितना नाम वाला हो गया भाई, वो करनाल की थी और उसने विदेश में जाके उसने इतना बड़ा नाम कमाया, और जिस गांव में वो पैदा हुई है वहां के लोगों को तो नशा ही अभी तक भी कि हमारे गांव में वो पैदा हुई थी, लेकिन इतना बड़ा नाम कमाया ना, देश का नाम ऊंचा किया, तो परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है? ईश्वर का नाम रोशन करने लिया। तो हम पूछें कि उसका नाम कहाँ तक रोशन कर रहे हैं, और फिर ये भी कहा कि यहाँ बैठना थोड़ी है, वापस आना है अपने देश, ये तो परदेश है ये दुनिया। तो आत्माओं को अपना घर भी याद आए कि हम जिस घर से आए हैं उसी घर में वापस जाना है। तो शिव बाबा ने हमें दो लक्ष्य दिए हैं, तात्कालीन लक्ष्य तो है मिलन परमात्मा से, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है कि हम आत्माएं जिस शुद्ध स्वरूप में इस संसार में आई थी उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है। जैसे कोई परदेश जाता है और परदेश में कुछ ऐसे गलत चीजें ली, इलीगल चीजें जो अपने देश में नहीं ला सकता है और वो छिपा करके लाता है, तो क्या होता है, पकड़ा जाता है, कस्टम्स में पकड़ा जाता है और वो चीज भी उसकी छीन ली जाती है, तो साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है, और अगर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल गलत है तो उसको जेल भी भेजते हैं, तो जेल भी मिला, जुर्माना भी भरा और वो चीज भी ले ली गई, और साथ साथ नाम कितना बदनाम होता, अरे फलाना व्यक्ति ऐसा हा? तो इसीलिए न परदेश से हम अपने देश में कोई इलीगल या कोई गैर कानूनी चीज ला सकते हैं, और न इस देश से कोई गैर कानूनी व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। आजकल अखबार में कबूतरबाज, क्या कबूतरबाज समझो ना भाई, किसी को अपना अपनी पत्नी समझ करके जैसे वो उसके पासपोर्ट पर ले गया एक औरत को, कितनी बुरी बात है ये, उस पत्नी पर क्या बीता होगा सोचने की बात है, जिसके पासपोर्ट पर किसी दूसरी औरत को विदेश लेके जा रहा है। तो न हम ऐसे ले जा सकते हैं और न ही हम अपने देश में कोई गलत चीज ला सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस संसार की तो कोई वस्तु न आप ले आए हो न ले जाओगे परम धाम में, आत्मा के साथ क्या जाएंगी चीजें, कौन सी चीज जाती है, केवल किए हुए कर्म, वही आत्मा के साथ जाएंगे, वो संस्कार के रूप में जाएंगे। और जिस शुद्ध अवस्था में आत्मा इस संसार में आई थी उसी शुद्ध अवस्था में ही जाना है। आत्मा अपने असली स्वरूप में बड़ी शुद्ध है, बड़ी पवित्र है, इसलिए जब भी मन में कोई अशुद्ध विचार उत्पन्न होता है कहा जाता मन खाता है, डर लगता है क्योंकि मेरे असल रूप में तो बड़ी शुद्ध हूं। जैसे ये सफेद वस्त्र हमने पहने हैं, जरा सा इस पर दाग होगा तो स्पष्ट दिखाई देता है, और लोग कहेंगे बेंजी यह दाग है, दाग है, क्योंकि इतना सफेद और एक छोटा सा दाग भी क्यों बुरा लगता है। तो आत्मा भी इतनी शुद्ध है अपने मूल स्वभाव में, और जरा सा बुरा विचार भी आता है तो कहते मन खाता है। तो क्यों नहीं हम इन विकारों को जीते, आत्मा वापस उसी शुद्ध स्वरूप में आ जाए। तो शिव परमात्मा कहते बच्चे अभी जो समय है वो अंत का समय है, अब सबके वापस घर जाने का समय आ गया है, आपको अगले सत्र में ये बात बताएंगे। इसलिए जिस स्वरूप में आप आए थे उसी स्वरूप में जाना है, शुद्ध पवित्र होकर के जाना है, और उसके लिए परमात्मा हमें कहते हे आत्माएं तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान वायदा करते हैं हम सबसे कि मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, पर उसके लिए क्या शर्त रखी, शर्त क्या है, तू मुझे याद कर। तो इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं ताकि ये सब जो हमारे सिर पर पापों का बोझा है वो सब हट जाए। ये पाप कैसे बने वो हम आपको कल बताएंगे कर्म के टॉपिक में, लेकिन आज ये कि कैसे उसको याद करें, तो इस राजयोग को हम दूसरे शब्दों में कहते यात्रा है, और इस यात्रा में परमात्मा मेरा साथी है, इस साथी को साथ लेकर के चलना है। कहते ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। ये सब क्यों कहते हैं, ताकि अंदर में ऐसा विश्वास और नशा हमारे अंदर आए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। और इस बात में हम ईश्वर को साथ रखकर, अब उनका परिचय भी मिला, तो उस परिचय को जानकर, उनसे संबंध जोड़कर, उनसे सच्ची प्रीत रख करके, उनसे ही मुझे प्राप्ति है, ये निश्चय कर आत्मा इस यात्रा में आगे बढ़े। और लक्ष्य हमको क्या मिला है कि जिस शुद्ध स्वरूप में आत्मा आई थी उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है। तो एक आंख में शिव बाबा कहते रखो मुक्ति, क्योंकि ये आत्माओं का धाम मुक्ति धाम है, और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। ये भी बड़ा लक्ष्य हमें राजयोग में मिलता है, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव, क्योंकि इस संसार में आना कोई बुरी बात नहीं है। ये संसार दुख रूप नहीं है, ये संसार सुख रूप है। भगवान ने हमें दुखी करने लिए दुनिया में नहीं भेजा, पर वो सुख शांति आनंद जो आत्मा का स्वभाव है, वो अनुभव करने लिए और दूसरों को बांटने के लिए भेजा, क्योंकि वो अनुभव भी तब होगा जब शरीर में होंगे। बिना शरीर में आए आत्मा को अनुभव भी नहीं होगा। जैसे कोई रात को गहरी नींद में सोया है, तो उस गहरी नींद में उसे क्या पता कि मैं सोने के पलंग पर सोया हूँ, या रेत पर सोया हूँ, या एक दीवार पर सोया हूँ, या एक फर्श पर, या सोफा पर। गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता है, और नींद नहीं आती है ना, तो वो सोने का पलंग भी खाता है। सोने का क्या फायदा, अगर सोना ही ना हो तो नींद ही नहीं आए, तो सोने का होकर के फायदा क्या। और अगर चाहे कहीं भी है पर नींद अच्छी आती है तो ज्यादा सुखी कौन। इसलिए फोटो दिखाते अखबारों में कि एक बस बेचारा ऐसा ही है, पर कितनी आनंद की नींद सो रहा है। तो नींद आनी चाहिए, धन किस काम का अगर नींद ही नहीं आए तो। गोलियां खानी पड़े नींद करने के लिए, कितनी बुरी बात है। नींद तो स्वाभाविक है इस शरीर के अंदर, परंतु परम धाम में जब हम आत्मा है तो वहां तो नींद ही नींद है, नींद ही नींद है। यानी आत्मा एक सुषुप्त अवस्था में है, उसको कोई अनुभूति नहीं है, गहरी नींद की अवस्था है। जब जागृत हो तब पता चलता है हम कहाँ हैं। तो आत्मा जब इस संसार में आती है तब उसे पता चलता है कि मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसलिए शरीर में आना भी जरूरी है। कई समझते हैं हम एक बार हम वहां चले गए तो वापस क्यों आए, मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, फिर वापस क्यों आए। अब यहाँ हम शिव परमात्मा ने एक नई बात हमें प्रकट की है, एक नया कंसेप्ट हमें दिया है, विचारधारा दी है कि ये संसार दुख रूप नहीं है, सुख रूप है। इस संसार में हम सुख अनुभव करने के लिए आते हैं, और ये संसार ऐसा समय था जब इस संसार में कभी दुख था ही नहीं, वो सत्युग का समय था, जिस समय मानव देव स्वरूप में था, और उस स्थिति को हम कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में रहते मुक्ति की अनुभूति थी, इसका विस्तार हम आपको कल बताएंगे। तो एक आंख में रखो मुक्ति, घर जाना है और उसके लिए शुद्ध होकर जाना है, उसके लिए विधि बताई, मुझे याद कर परमात्मा कहते हैं। फिर दूसरी बात, दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, मानव से देव बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, फिर उसके लिए संसार में तो आना ही पड़ेगा, सतयुग तो इस सृष्टि पर ही होगा। तो कई कहते वहां गए तो फिर वापस क्यों आए, हम कहते क्यों नहीं आओ, अब आए भी तो वहीं से है ना, इस संसार में हम आए कहां से, आए कहां से, वहीं से आए। अब आप जिस घर से आए हो, जिस शहर से वापस जाएंगे ना, परसों तरसों जब जाना होगा, तो जहां से आए हैं वहीं जाएंगे, या बैठ थोड़ी जाएंगे। तो जहां से आए हैं वहां जाना है वापस, लेकिन फिर भी तो आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, और दोबारा आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? क्यों आना चाहेंगे? एक बार देख लिया सब, दोबारा क्यों आना चाहेंगे? लेकिन क्यों आना चाहेंगे? क्यों अच्छा लगा? अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं आना चाहेंगे, कि दोबारा कौन जाएगा, हो गया, बहुत हो गया। लेकिन अच्छा लगा, खुशी मिली, जो आपको चाहिए था वो प्राप्ति मिली, तो फिर से चाहेंगे आना। तो ये संसार भी कोई दुख रूप तो है नहीं वास्तव में। मानव देव बन जाए कितना सुख स्वरूप का अनुभव है, पर ये संसार दुख रूप किसने बनाया? हम नहीं बनाया। अभी भी ये चारों ओर कितनी बात फैल रही है पर्यावरण प्रदूषण की बात। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत गर्मी बढ़ रही है, पर ये किसने सब किया? अभी वहां यूरोप में कहीं एक आपस में G8 बैठ करके बड़े बड़े नेताएं, जो कई देशों के नेताएं मिल करके बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये जो गर्मी है, जो तापमान बढ़ रहा है, ये कम कैसे करें, क्योंकि इससे तो दुनिया का बुरा हाल होगा। जीवन में हम जी नहीं सकेंगे, सांस नहीं ले सकेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो कैसे कम हो, क्योंकि ये तो भगवान की सृष्टि है। लेकिन परमात्मा को पता है मुझे कैसे इस सृष्टि में परिवर्तन लाना है, इसलिए कहते ना, नर चाहत कुछ और की और भाई, ईश्वर के मन में तो कुछ और ही है, कैसे इस संसार का परिवर्तन करना है। फिर कुछ तो सत्युग आना है, वो नई दुनिया आनी है, मानव देव बनना है, ये परमात्मा ने हमें दूर दृष्टि दे दी है। तो ये संसार जो सुखरूप है, उस सुखरूप में फिर से आना है, उसके लिए सत्कर्म करने होंगे। वो सत्कर्म क्या है वो भी आपको कल बताएंगे। लेकिन अब है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस यात्रा पर चलना है, जिसमें परमात्मा को साथी बनाकर चलना है। तो इस राजयोग में 4 अवस्थाएं हैं। जैसे पड़ाव आते हैं ना बीच में, आप वैष्णो देवी जाते हैं या अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो बहुत दूर है, तो बीच बीच में आप रुकते हैं और पता चलता है कि अभी कितना दूर है, मंजिल कितनी दूर है। पड़ाव आते हैं, वो माइलस्टोन्स आते हैं कि बाकी इतना किलोमीटर दूर, बाकी इतना किलोमीटर दूर। अगर मंजिल पर जल्दी पहुंचना है और फासला ज्यादा है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, गाड़ी की स्पीड को, तभी तो समय पर पहुंचेंगे। तो वो किलोमीटर स्टोन्स आते हैं रास्ते में, तो ये अलग अलग मानो पड़ाव के रूप में है। इसी प्रकार परमात्मा कहते इस राजयोग के अंदर भी 4 अवस्थाएं हैं, जिससे पता चलता है कि आप इस यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहली अवस्था का नाम है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जिसको हम कहते हैं विचार सागर मंथन। मन में श्रेष्ठ विचार लाओ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा सच्चा घर कहाँ है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है। ये मन में श्रेष्ठ विचार लाओ, इससे क्या होगा, मन का शुद्धिकरण होगा। जैसे हम दूध को किसी बर्तन में रखना चाहते हैं तो बर्तन को साफ करेंगे ना, कि ऐसे ही गंदे बर्तन में रख देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अगर खटाई वाला बर्तन होगा और उसमें दूध रख दिया और उबाला तो फट जाएगा, और अगर मैला बर्तन होगा और दूध रख दिया तो दूध भी मैला हो जाएगा, क्योंकि दूध तो साफ चीज है, शुद्ध चीज है। तो दूध को जिस पात्र में रखना है वो साफ चाहिए, क्योंकि दूध साफ है। इसी प्रकार परमात्मा की याद तो बहुत ही शुद्ध चीज है, परमात्मा कितना पावन है। अब उस पावन परमात्मा को मन में स्थान देना है तो मन रूपी पात्र भी कितना शुद्ध चाहिए। क्यों मन में नहीं परमात्मा की याद ठहरती? क्योंकि मन में तो विकार घूम रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी। अब यही मन में घूमेगा तो ईश्वर कैसे स्थान लेगा? अमृत का भी घड़ा हो पर एक बूंद भी जहर की पड़ जाए तो अमृत क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो इस मन रूपी पात्र में अमृत को स्थान देना है। तो जब पहली अवस्था से हम गुजरते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, ये ज्ञान के आधार पर, तो व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार जो कल आपको बताए, वो विचार भी मन में आएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये क्यों आ रहे। कई बार होता है ना, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो फर्स्ट गियर में ही चलाना पड़ता है, नहीं तो ब्रेक बार बार क्योंकि लगानी पड़ती, होल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो अगर थर्ड गियर ले लेंगे, फोर्थ ले लेंगे, तो ब्रेक अचानक देंगे तो फिर एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि पकड़ नहीं सकते हैं। तो पहली अवस्था में एक संघर्ष है, भारी गियर जैसे होता है तो मेहनत लगती है, तो पहली अवस्था में मेहनत लगती है, क्योंकि अभी अभी मैं श्रेष्ठ विचारों का मनन करने बैठूंगी, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं, कितना अच्छा विचार है ये, निश्चय के आधार पर ये विचार लाना है, मैं अशुद्ध आत्मा नहीं हूं, मैं तो बहुत शुद्ध हूं। कई कहते मैं कैसे मानूं मैं तो मैं शुद्ध हूं, मेरे मन में तो बहुत विचार गंदे आते हैं, मैं तो हूं ही अशुद्ध, मैं तो हूं ही पापी। लेकिन नहीं, अगर मैं यही कहूंगी मैं तो पापी हूं पापी हूं पापी हूं, तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, मैं तो निर्बल हूं निर्बल हूं निर्बल हूं, तो शक्ति कैसे आएगी, निर्बल कहने से तो शक्ति नहीं आएगी ना। या को हे प्रभु शक्ति दो, तो शक्ति कैसे मिलेगी, मैं तो निर्बल ही सोच रही हूं अपने आप को, शक्ति रूप हूं ये सोचूंगी तब शक्ति आएगी, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे।